हरे कृष्णा। इसमें लगातार तीन श्लोक हैं हमारे पास, पांच छह और सात। इसमें सातवां श्लोक शायद बोर्ड पे लिखा है। तो हम लोग आखिरी श्लोक ही पढ़ेंगे। अब हमारे पीछे बोले सा विजित्य दिशा सर्वा लोकान च त्रिन महासुर देवा असुर मनुष्य इंद्र गंधर्व। ये सब तो इसमें लिखे नहीं है, आप क्यों बोल रहे थे? दोबारा बोले सर्व सत्वपतिन जित्वा वशमानीय विश्वजित जहार लोकपालान स्थानानि सह तेजसा सर्वसत्वपतिं जित्वा वशमानीय विश्वजित जहार लोकपालाना स्थानानि सह तेजसा सर्वसत्वपतिं जित्वा वशमानीय विश्वजित जहार लोकपालाना स्थानानि सह तेजसा सर्वसत्वपतिं जित्वा वशमानीय विश्वजे जहार लोकपालाना स्थानानि सह तेजसा। तो शब्दार्थ इसका जो है रहने देते, सीधा तीनों श्लोकों का हम लोग पांच छह और सात का अनुवाद पढ़ेंगे। हिरण्यकशिपु समग्र ब्रह्मांड का विजेता बन गया। इस महान असुर ने तीनों लोकों, उच्च मध्यम और निम्न लोकों को जीत लिया, जिसमें मनुष्य गंधर्वों गरुड़ों महासर्पों चारणों विद्याधरों महामुनियों यमराजों मनुष्यों यक्षों पिशाचों तथा अनेक स्वामी एवं भूत प्रेतों के स्वामियों के लोक सम्मिलित थे। उसने उन सारे अन्य लोगों के शासकों को भी हरा दिया, जहाँ जहाँ जीव थे, और उन्हें अपने वश में कर लिया। सबों के निवासों को जीतकर उसने उनकी शक्ति तथा प्रभाव को छीन लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में गरुड़ शब्द यह सूचित करता है कि गरुड़ जैसे विशाल पक्षियों के भी लोग थे। इसी प्रकार उरग शब्द इंगित करता है कि विशाल सर्पों के भी लोक हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का ऐसा वर्णन आधुनिक विज्ञानियों के लिए चुनौती स्वरूप है, जो यह सोचते हैं कि इस धरा को छोड़कर सारे लोग शून्य हैं। विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने चंद्रलोक की यात्राएं की हैं, जहां उन्हें कोई जीव नहीं मिले, केवल धूल तथा पत्थर के विशाल खड्ड मिले थे। यद्यपि चंद्रमा इतना चमकीला है कि समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सूर्य की तरह काम करता है, निसंदेह आधुनिक वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड विषयक वैदिक जानकारी के प्रति आश्वस्त कर पाना संभव नहीं है। तो भी हम वैज्ञानिकों की इन बातों से अत्यधिक प्रभावित नहीं हैं कि अन्य सारे लोग शून्य हैं और केवल पृथ्वी ही जीवों से पूर्ण है। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद्भागवतम क्लास में। अध्याय का नाम है ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यप का आतंक, और इसका हम लोग पांच छह और सात श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या सुनी, और इतनी कठोर तपस्या थी कि ऐसी तपस्या सोचना भी बड़ा मुश्किल है। और उस तपस्या को कर कर उसने ब्रह्मा जी को अपनी ओर आकर्षित किया और उसका फल ये हुआ कि उसने जो है हिरण्यकश्यपु ने वरदान के रूप में पहले तो अमृत चाहा मुझे अमर कर दिया जाए, लेकिन अमर तो ब्रह्मा जी भी नहीं थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने फिर उन सब चीज़ों को मांगा जिससे कि एक उसको सिक्योरिटी फील हो कि मैं आकाश में ना मरूं, मैं पृथ्वी पे ना मरूं, घर के अंदर नहीं घर के बाहर, इस प्रकार सारी चीज़। यहाँ तक ये भी बोल दिया कि ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाए गए सभी जीवों के हाथों ना मरूं। अब 84 की 84 लाख ही हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा ही निकली है ना, प्रजापतियों को उत्पन्न किया, फिर प्रजापतियों ने उन सब योनियों को बनाया, तो एक ही सेंटेंस में फिर सब मांग लिया। तो इस प्रकार जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है तुमने इतनी कठोर तपस्या करी इसलिए मैं तुम्हारी बात को पूरा करता हूँ, तुम्हें मैं वरदान दे देता हूँ। और वरदान प्राप्त होते ही इसे पिछले श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा कांतियुक्त स्वर्णिम देह पाकर, एक तो आशीर्वाद मिल गया जो बोला तथास्तु, और दूसरा उनका शरीर क्योंकि पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुका था, चींटियों ने खा लिया था और पूरा स्केलेटन पूरा बॉडी जो है खत्म हो चुका था, मांस मज्जा वगैरह कुछ नहीं थी अंदर, केवल हड्डियां रह गई थी, है ना। ऐसे शरीर को ब्रह्मा जी ने फिर से स्वर्णिम युक्त कर दिया, सुंदर देवताओं जैसे सुंदर शरीर हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो सबके शरीर की ऐसी स्थिति है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, पैकेजिंग भगवान की तरफ से इतनी सुंदर की गई है शरीर की कि किसी को भी नहीं लगता कि ये शरीर जो है इसे घृणा करनी चाहिए, है कि नहीं। हर व्यक्ति को अपना शरीर उसमें छूट एक दो कमी लगती है, बाकी तो उसको लगता है बाकी सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता और ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता। रूपा जी कहते हैं कि ये शरीर जो है एक बैग के समान है, जैसे कैरी बैग होता है ना, वैसे ये बैग भी कुछ कैरी करता है। क्या क्या कैरी करता है ये? हड्डियां कैरी करता है और क्या है इसके अंदर? जो ये बैग है इसकी सिलाई जो हुई है इस तरह से हुई है जिसमें कि बाहर जो है स्किन लगाई गई है और उसके अंदर जो है ढांचा है शरीर में हड्डियों का, और उसको कवरिंग कर रही हैं अंदर जो है लिगामेंट और इन सब चीज़ों से, फिर कई तरह के वेन्स हैं और उसमें खून का प्रवाह चल रहा है। वो खून जो बाहर निकल जाए तो देखने का मन नहीं करता, वो खून से भरा हुआ है। और इसके अंदर जो है और वो सब गंदगी है जो हम बाहर नहीं देखना चाहते हैं लेकिन लेकर चलते हैं साथ साथ, सुबह दोपहर शाम आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह जाते हैं लेकिन भरा हुआ उस गंदगी से। और फिर इसको सजाने के लिए बाहर कुछ एक सेंसेस लगा दी गई हैं इस बॉडी के, इस थैले के बाहर कुछ बाल दिए हैं, कुछ आंखें लगा दी और कुछ नाखून इत्यादि लगा दिए। तो ये सारी चीज़ें, चाहे नाखून भी हों इसलिए हम काटते रहते हैं, अगर थोड़े से लंबे हो जाएं तो देखने का मन नहीं करता, है ना, ऐसे खतरनाक हो जाते हैं। बाल किसी के ज़्यादा लंबे कर दो तो वो जो है डरावना लगने लगता है, और रोज अगर ना धोए तो उसमें कोई और आके रहने लगता है, कई लोग आने लगते हैं उसमें, तो फिर वो अंदर ही मलमूत्र त्यागेंगे जितने भी प्रकार के जीव आएंगे, तो उनका भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आँख कान ये सारी चीज़ों में देखिए आप, इसको इस तरह से लगाया गया फिट किया गया है कि इसकी रोज इसकी सर्विसिंग चाहिए, है ना, रोज सर्विसिंग चाहिए। सर्विसिंग करते रहोगे तो ठीक है, और जिस दिन सर्विस मैंने एक भेजी गाड़ी तो व्यक्ति जो है 3 फीट की दूरी से बात करता है, पता नहीं क्यों। आपको आपको अपने आप लगेगा लोग आपसे दूर दूर से बात करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं वो किस लिए मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि अब आप उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। इसी तरह जब शरीर के अंदर से, इस देह के अंदर से आत्मा निकल जाती है बाहर, तो जो लोग उससे प्रेम करते थे वो सब लोग क्या बोलते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लेकर जाओ, क्योंकि वो शरीर अब धीरे धीरे विकृत होने लगा है। उसके अंदर जो है अन्य जीव जो पहले से रह रहे थे उन सब लोगों ने अपना पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया शरीर, अब वो खाना पीना शुरू कर दिया, क्योंकि तो फीस्ट हो गया उसको, और खतरनाक धीरे धीरे दुर्गंध और बदबू आने लगती है। और उसके बाद व्यक्ति कहता है जल्दी लेकर जाओ उसको, जो भी है क्या करना है इसका पता हो। तो ये जो हमारा देह भी है ये भी इसी प्रकार है, देह से आसक्त होकर व्यक्ति अपना जीवन का कितना समय इस देह की मेंटेनेंस में लगाता है आप सोच कर देखिए। देह की मेंटेनेंस में नीड्स को पूरा करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, भोजन करना ठीक है और फिर इसकी साफ सफाई रखना भी ठीक है, लेकिन जब इससे ज्यादा करना शुरू करते हैं तो व्यक्ति का कितना समय इसको मेंटेन करने में जिम इत्यादि पार्लर इत्यादि जाकर इन सब चीजों में लगता है। महान भक्तों ने क्या किया, वो लोग मिरर वगैरह नहीं रखते, तो तिलक लगाने के लिए भी जो है ना कई बार भक्ति ठाकुर जी बिना शीशे का इस्तेमाल नहीं करते थे, वैसे तिलक लेते थे ऐसे तिलक लगा लेते, क्योंकि हम लोगों को अपने रूप से भी इतनी आसक्ति होती है कि बस थोड़ी सी कमी है, बाकी तो वो जो मिस वर्ल्ड का ताज जिसको डाला है उससे ज्यादा कमी नहीं है, पर थोड़ी सी कमी है, या जो वो हीरो जो चमक रहा है उछल कूद कर रहा है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी दिक्कत। इसलिए व्यक्ति सुबह दोपहर शाम शीशे को निहारना चाहता है, परछाई तक का नहीं छोड़ता वो, और गाड़ियों के आसपास निकलते हुए भी जहां उसको मिरर मिल जाए तो वो चाहता है क्या कि अपने को ठीक कर प्रेजेंटेबल हो सब कुछ। तो इंडस्ट्री का हमारे जो बताते हैं बिजनेस स्टडीज में कि बहुत सारा पैसा लोगों का इन्हीं सब चीज़ों को मेंटेन करने में लगता है। इसमें कॉस्मेटिक की जो इंडस्ट्री है ये बहुत, ये कभी भी डाउन नहीं जाती, ये हमेशा अप ही जाती है। तो ऐसे शरीर को जो है यहाँ पे हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उसकी चिंता करना छोड़ दी और खतरनाक तपस्या में लग गई और फिर पूरा शरीर खत्म हो गया है ना, केवल हड्डियों का ढांचा बचा। तो व्यक्ति जो आध्यात्मिक पथ में है उन्हें भी कई बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि वास्तव में हम जिस देह के लिए इतना समय लगाते हैं, इसकी साज सज्जा के लिए, रख रखाव के लिए, तो कोशिश करनी चाहिए उतनी लगाएं जितनी की इसकी जरूरत है। अधिक समय लगाना भी क्या है भक्ति में, इसको बोलते अनफेवरेबल चीज़ें बोलते हैं कि ये फेवरेबल नहीं है भक्ति के, कि काफ़ी लंबा समय आप केवल शरीर के लिए लगा रहे हैं और उस शरीर के लिए जिसके अंदर दुनिया भर का गंध भरा है। आप जो खाते हैं अच्छी से अच्छी चीज़ भी खाएं, सुगंधित से सुगंधित चीज़ भी खाएं, लेकिन मशीनरी ऐसी फिट है कि वो ऐसी चीज़ें एक दुर्गंध वाली चीज़ ही निकालेगी बाहर। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो देह से ज़्यादा आसक्त ना हो। मैं एक बार एक डॉक्टर के पास गया था, तब मेरी हड्डी टूटी हुई थी, तो उनके डॉक्टर के पास एक स्केलेटन था 1 फीट का, तो उसको देखते देखते मुझे लगा वाह इसका अगर रोज व्यक्ति दर्शन करे तो वैसे ही वो हो जाएगा, क्या वैराग्य आ जाएगा उसके अंदर, आना चाहिए मतलब उस चेतना से देखे तो, क्योंकि स्केलेटन में क्या है वो देख पा रहा है कि मेरा शरीर ऐसा ही है। जैसे जिसको डराने के लिए दिखाते हैं लोगों को, अगर डराना तो क्या दिखाते हैं, बिजली के बोर्ड पर क्या बनाते हैं हमारे हाथ की दो हड्डियां और हमारी शक्ल, यही तो होता है हमारा। तो जिस चीज से डराते हैं लोगों को वो हमारे अंदर लेके चल रहे हैं। तो मैंने कहा वो स्केलेटन जो है कितना अच्छी चीज है कि अगर उसको सुबह शाम इसका दर्शन करे व्यक्ति, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने लिए तो फायदेमंद है ही, और इसका दूसरा फायदा ये है कि कई बार लोग दूसरों के देह से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं केवल किसी के दूसरे के स्केलेटन को दूसरे के स्केलेटन से आसक्त होकर कई लोग प्राण त्यागने की बात करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। देखा है, सुना है कि मैं जी हाँ आपके बगैर जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, और 20 साल 25 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया तो उनका भी सारे व्यक्तित्व तो खत्म हो जाते हैं केवल एक स्केलेटन के लिए। अगर कोई व्यक्ति वो किसी बहुत अधिक प्रेम करता है उसको बोलो कि ठीक है जिस स्किन से, क्योंकि इसको स्किन डिजीज कहा गया है, उसकी स्किन अगर हटा दी जाए तो क्या वो उतना प्रेम कर पाएगा? नहीं नहीं ब्रोजी, स्किन कैसे हटा सकते, फिर तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर स्किन नहीं हटाते तो वो स्किन आप 20-25 साल बाद देखना चाहोगे जब उसमें छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे? नहीं। चलो अगर ऐसी स्थिति में भी नहीं देखना चाहते तो तब उस स्किन को हाथ लगाना चाहोगे या उसको देखना चाहोगे जब कई दिन तक वो पानी के से पानी से दूर रहे? नहीं। तो ये किस्म का जादू है कि नहीं? कितना खतरनाक जादू है इसके अंदर, स्किन में, कि व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है कि सब कुछ वो करता है। लेकिन जो डिवोशनल पाथ पर है वो धीरे धीरे अपने शरीर की इस प्रकार की जो जरूरतें या डिजायर्स हैं शरीर को रख रखाव को ठीक करने के लिए, उन सब चीज़ों से धीरे धीरे वैराग्य ले लेते हैं। और जब व्यक्ति उन सब चीज़ों से वैराग्य लगता लेता है तो देखता है उसके पास कितना समय है भक्ति करने का, क्योंकि अभी तो उसको बोले अगर आप भक्ति कीजिए माला कीजिए तो क्या बोलता है? टाइम ही नहीं है। क्यों बोलता है? क्योंकि अभी प्रायोरिटी सेट नहीं है, अभी वो है कि बस इसी शरीर को। और ये वो शरीर है जिसको बचपन से लेकर अंतिम समय तक उसके रख रखाव के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कमाई धमाई भी इसी के लिए करनी पड़ती है। और अंत में एक दिन उसी शरीर को हम लोगों को क्या करना पड़ता है? जलाना पड़ता है। तो लाइफ का इतना बड़ा पार्ट हमारा केवल उस शरीर की मेंटेनेंस में लग गया। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर होते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि हम ये शरीर नहीं, हम इस शरीर के अंदर भगवान के वो अंश जिसे आत्मा कहते हैं और जिसकी टेंडेंसी, जिसकी नेचर सेवा करना है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जो भगवान का नित्य दास है, ये उसकी टेंडेंसी है। तो ये आत्मा जो है ये एटर्नल है, ये शाश्वत है, और शरीर क्या है? नश्वर है। जिस व्यक्ति के अंदर ये आत्म साक्षात्कार का करने का भाव जागृत हो जाता है, उस पाथ पर आ जाता है, तो अचानक उसके जीवन से संबंधित सारे दुख, सारे कष्ट, सारी योजनाएं, सारी अटैचमेंट्स खत्म हो जाती हैं। जिन चीजों को लेकर वो दुखी था, परेशान था, डिस्टर्ब था, हमेशा दुखी रहता था, योजनाएं बनाता था जिस शरीर को लेकर या उस शरीर से संबंधित दूसरे शरीरों के रख रखाव के लिए, वो अचानक खत्म। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आपको अचानक बताया गया, ऐसा हुआ एक बार, मैं एक भक्त के घर गया, भक्त नहीं सॉरी स्कूल टाइम में एक फ्रेंड के घर गया, तो बड़ी मेहनत कर रहा था वो, क्योंकि एग्जाम था अगले दिन, बहुत मेहनत कर रहा था। अच्छा, वो मेहनत क्या कर रहा था ये बात बताएंगे आपको, बट बड़ी मेहनत कर रहा था उस सब्जेक्ट को लेकर। तो मैंने उसकी कुछ बुक्स को उठाकर देख लिया, जिस चीज की मेहनत कर रहा था उसको उठाकर देखा मैं। मैंने कहा ये क्या, आप किस विषय की तैयारी कर रहे हो? कहते इस विषय की। मैंने कहा बट एग्जाम तो कल दूसरे विषय का है। कहते क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, तो पागल हो गया वो। कहते क्या बात कर रहे हो, 3-4 दिन से इसी के लिए तो मेहनत कर रहा था और एग्जाम कल है। तो एकदम उसको डिटैचमेंट आ गई उस चीज से, है कि नहीं? और किससे अटैचमेंट आ गई फिर? अब जो सा एग्जाम था, है कि नहीं? और तैयारी क्या कर रहा था मैं बता देता हूँ, वो फर्रे बना रहा था एक्चुअली दो तीन दिन से लगा हुआ था। तो मैंने कुछ उठाकर देखा, मैंने कहा किस सब्जेक्ट में बना रहे हो? तो उसकी सारी मेहनत जो है उसका लगा वैसे ही हो गई। तो उसी तरह हम लोगों का भी जो जीवन है, इस जीवन का लक्ष्य हमने जिस चीज को बना रखा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और पता चले अरे ये शरीर तो खत्म हो जाना एक दिन, ये नश्वर है, इसने केवल दुख ही देने। तो इस तब व्यक्ति को पता चलता मेरा विषय भोग नहीं है, मेरा विषय यहां पर शाश्वतता प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, यहां तो सुखी कोई रह ही नहीं सकता। और जब तक उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा तो वो हर व्यक्ति हिरण्यकश्यप की तरह ही है, सारे मिन्नी हिरण्यकश्यप हुए। क्यों? क्योंकि धैर्य लक्ष्य नहीं मालूम, पूरी एनर्जी शरीर का नुकसान कर डाला उसने तपस्या के लिए, सो दैट कि उसको वो प्राप्त हो सके जो, जिससे कि वो पूरे संसार को जीत सके, उस विष्णु तक को जीत सके। तो हमारी स्थिति भी तब तक यही है छोटे हिरण्यकश्यप, क्यों? क्योंकि जब तक ध्येय क्लियर नहीं, जब तक आत्म साक्षात्कार के पथ पर नहीं चल रहे, तब तक ऐसी स्थिति है। तो अचानक जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर चलता है, आप देखेंगे, अच्छा एकदम नहीं होता, किसी को लगे प्रभु जी आज हमने सुन लिया कल से एकदम करते हैं ठीक, नहीं, समय लगता है। आज आपने सुना है ना, बार बार सुनेंगे, बार बार रिमाइंड कराएंगे भक्तों का, बार बार ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे वो ज्ञान यहां पर बैठना शुरू करेगा। क्योंकि वो ज्ञान अब शुरू किया हमने, 25 45 55 किलोमीटर आगे जाने के बाद मालूम पड़ा हम गलत आ गए। ये 25 45 50 क्या है? हाँ, हमारी आयु है। इतना आगे जाने के बाद हमें पता चला है कि हम गलत आ गए, इस देह को केंद्र बिंदु बनाकर जी रहे थे, भोग को केंद्र बिंदु बनाया था, इतनी तपस्याएं करी, हिरण्यकश्यप को इतना नहीं करी लेकिन दूसरी तरह से करी। हमने कैसे तपस्या करी? स्कूल भेजा गया हमें, हम जाना नहीं चाहते थे, बहुत कम बच्चे होते जो हंसते हुए स्कूल जाएं। तो बचपन से तपस्या, सुबह उठाया जा रहा ब्रह्म मुहूर्त में कि जा, और ऐसे कैसे जाएगा, थोड़ा वेट तो डालना चाहिए इसके ऊपर। फौज में क्या होता है मालूम है, जब खाली बैठे होते थे सारे, उनको ना सामान पकड़ाते, कहते भागो चक्कर लगाओ, क्यों? क्योंकि खाली बैठे तो जंग लग जाएगा, शरीर के ज्वाइंट्स में भी जंग लग जाएगा, है ना, आलस्य आ जाएगा, जो लड़ाई करनी होगी जब तक वो उठाएगा बंदूक तब तक गोली लग जाएगी उसको, तो भगाते हैं उसको। तो अब बच्चा आराम से भी जा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे जाएगा, कैसे दें? इसको वेट देना चाहिए कुछ, कितना वेट दें इसकी, इसको पहले इसका तोलो कितने का है? ये 25 किलो का, अच्छा कितना उठा सकता है? 5 किलो 10 किलो, हाँ डालो बैग, डालो उसके ऊपर, चल बेटा वैसे जा। वो खतरनाक बैग लेके जाता है, इतना भारी भरकम, स्कूल पहुंचता है, उसके बाद 8 तरह के टीचर उसकी हालत खराब करते हैं, सारे लोग बदले लेते हैं उससे, ना? बहुत मुस्करा रहा था, ये होमवर्क करके ला चल, है ना, जिनको टीचर्स पसंद नहीं करते उनको खतरनाक पनिशमेंट देते हैं। एक बार ऐसे हुआ, एक 3 स्टूडेंट आए, एक स्टूडेंट उसमें बेचारा, उसको पसंद नहीं करता था टीचर, उसने बोला, पहले बच्चे को बोला एग्जाम है बेटा आज, बोलो लिखो रेड, आप लिखो लिखो डॉग, उसने लिख दिया डॉग। दूसरे को बोला बेटा लिखो कैट, उसे कैट लिख, जो पसंद है कहेगा तू लिख हिप्पोपोटामस लिख कहता मैडम ये क्यों लिखवा रहे हो मेरे से, कहते कुछ आसान सा, ठीक है दोबारा लिखो, चलो तुम लिखो इंडिया, कहते ठीक है, कहते तुम लिखो चाइना, कहते ठीक है, कहते स्विट्जरलैंड लिख कहता मैडम ये भी बहुत मुश्किल है, इसको फेल करना चाहता हूँ, है ना, तो उसको इतनी खतरनाक चीज दे रही। फिर कहते हैं कुछ और कुछ दीजिए, अब पास करूंगा मैं, कुछ भी दीजिए, कहते ठीक है, कहते लिखो डॉग भों भों, कहते ठीक है, कहते लिखो कैट म्याऊं म्याऊं, कहते ठीक है, कहते तो लिखो हॉर्स कहते ये कैसे लिखूं तो वह बच्चा बेचारा शुरू से स्कूल जाता है, और उसके स्कूल में जो है उसकी हालत खराब कर देते हैं टीचर, ये लिख कर ला, ये कर करा, ये सिलेबस, एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना, बच्चे को बोलते हैं बेटा संडे को कहाँ जा रहा है, कहता मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, 7वें दिन भी नहीं छोड़ते उसको, और फिर वो 12 साल तक लगातार 8 से 10 घंटे, ऊपर से अगर कोई फालतू का नामी ग्रामी स्कूल ले लिया जो आपके घर से 25-30 किलोमीटर दूर है, तो बेचारे के 2 घंटे जाने के, वो अभी से गुड़गांव टाइप की जॉब कर रहा है अभी से हमारे तो भक्त लोग बेचारे इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद, एमबीए करने के बाद, तब पनिशमेंट मिलती है उनको, तेरे को 2 घंटे ट्रैफिक में रहना है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। पनिशमेंट तब मिलती है, कई बच्चों को बचपन से मिलती है, 1.5 घंटा तू बस में रहेगा और 1.5 घंटा वापसी में भी बस में रहेगा, ठीक है। तो इतनी पनिशमेंट बचपन से, इतनी तपस्या किस लिए, ताकि ये बड़ा होके 2 वक्त की रोटी खा सके, है कि नहीं? ये बहुत मुश्किल है कमाना। कल हम बता रहे थे, कल ही इलेक्शन शाम को शायद, कि जो नामी ग्रामी लोग हैं, बिल गेट्स, टाटास, बिरलास, ये कैश साथ में थोड़ी लेके चलते हैं। ये जिस गाड़ी में बैठे लोडेड है 1000 के नोटों से, डॉलर से, नहीं। कहाँ होता पैसा? बैंक्स में होता है या प्रॉपर्टीज में होता है, तो खा पाते हैं उसको। बस एक मैसेज आता है ना कि आज इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है। तो मैंने कहा कि आप ऐसे एक दूसरे को मैसेज करते रहा करो, कुछ 0 एक्स्ट्रा लगा दो उसमें, 1 के साथ 15 0 लगा के, सर योर बैलेंस इज दिस, योर बैलेंस दिस मच दैट मच। खुशी होना है ना, एक फील करना ना, अच्छा फील करना है, फील गुड करना है ना, तो कर लो। एक व्यक्ति के कई घर होते हैं, इधर भी मेरा घर है, उधर भी मेरा घर है, इधर जो बड़ा बोलो, लाल किला भी मेरा घर है, कुतुब इधर भी मैं रहता नहीं हूँ, रहता माता पिता के साथ हूँ, किराए पे दिया हुआ है प्रदर्शनी के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि केवल इधर एक सेटिस्फेक्शन फील करने के लिए 20, 50, 100, 500 लोग बस जायजा करते हैं मेरी, कि ऐसा कुछ हो गया, इसने ऐसा कर दिया। मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे जाने पहचाने, कुछ मूर्तियां लगे जिस पर जो है कौवा कबूतर आके प्रणाम करे। केवल एक इस प्रकार की सेंस दिमाग में रहती कि बस इंजॉय, ये सब मेरा। तो अननेसेसरली बचपन से तपस्या करता व्यक्ति वृद्धावस्था तक, स्कूल कॉलेज भी हो गया, उसके बाद फिर जब डिग्री हाथ में आ जाती है तो वहां फुल स्टॉप नहीं हुआ, ये तो इनिशिएशन हो गया। डिग्री इज नॉट अ फुल स्टॉप, डिग्री फुल स्टॉप है किस रूप में, पढ़ाइयों के रूप में, एग्जाम के रूप में, लेकिन वास्तव में देखे तो ये एक नया इनिशिएशन है। किस लिए? डिग्री के बाद क्या होता है? अब डिग्री जॉब दिलाती है आपको, बिजनेस कराती है आपसे, तो अब जो है दुख तकलीफें और संघर्ष कंपटीशन बढ़ता है, और इस प्रकार व्यक्ति उस कंपटीशन में आगे रहने के लिए, बने रहने के लिए हर तरह के काम करता है, फिर हर तरह की शब्दों का प्रयोग करता है, चाहे वो झूठ हो चाहे सत्य हो, है ना। और ये सब करते हुए भी उसको कई बारी जो भोजन समय पे पाना है नहीं पाता, जो परिवार को समय देना है नहीं दे पाता। तो इस प्रकार व्यक्ति अपना जीवन समर्पित करता है इस प्रकार के दुर्गम या कठिनाई भरे जीवन को अपनाने के लिए। इतनी बुरी स्थिति है। केवल क्या गलती हो गई उस व्यक्ति से? क्या गलती हुई? उसके आस पड़ोस के लोगों ने, उसके घर के अपने लोगों ने, किसी ने नहीं बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हिरण्यकश्यपु की मम्मी बता देती उसको, बेटा वैसे पता था इसको, इसलिए इसने ज्ञान का व्याख्यान भी किया लेकिन अप्लाई नहीं किया। इसलिए हमारे देश में भी सब लोग जानते हैं गीता का क्या सार है कि नहीं? सब लोग जानते कि नहीं? सबको पता है, अप्लाई करता है कोई? तो जब ज्ञान नहीं होता, जब लक्ष्य क्लियर नहीं होता, तो हिरण्यकश्यपु जैसे लोग दुर्गम तपस्याएं करते हैं किसी चीज को और शक्तिमान बनने के लिए, और पावरफुल बनने के लिए। हम लोगों का भी ट्रेनिंग हुआ है और मेहनत करने के लिए, और पावरफुल बनने के लिए। पावर मतलब मनी इज अ पावर ना, तो यहां तो इसने तपस्याएं शक्तियां अर्जित करी, शक्तियों से वो किन किन को हरा रहे देखो, नाम सुनो। कह रहे हिरण्यकश्यपु समस्त ब्रह्मांड का विजेता बन गया। इस महान असुर ने क्या किया, तीनों लोकों को, उच्च लोक, मध्यम लोक, ओम भूर भुवर स्वः बोलते ना, भूर भुवर स्वः, इन तीनों लोगों को जीत लिया, शक्ति आ गई। और इसमें कौन कौन थे, जैसे हम 4 लाख मनुष्य योनियां बताते हैं तो ये उसी का वेरिफिकेशन है। मनुष्यों को भी जीता, गंधर्वों को भी जीता, गरुड़ों के लोगों को भी जीता, सर्पों को भी लोगों को जीता, चारणों के, विद्याधरों के, महामुनियों के, यमराज इत्यादि सबको जीत लिया, मनुष्यों, यक्षों, पिशाचों, भूत पिशाच है ना, भूत प्रेत, समस्त लोगों को जीत लिया, सारे शासकों को हरा दिया, शक्ति आ गई, तो पावर मिली। और उस पावर से उसने क्या किया, सबके पर विजय प्राप्त कर ली। और उद्देश्य क्या था कि अब मैं जो हूं क्या बन जाऊं, बस भगवान बन जाऊं। तो जब हम लोग तपस्या करते हैं, वो तपस्याओं का इतना उद्देश्य होना चाहिए कि ठीक है हमारी नीड्स और जो हमारे कर्मों के आधार पर जो हमें प्राप्त होना है, दैट्स ऑल। लेकिन जब व्यक्ति हिरण्यकश्यप बनना चाहता है, अर्थात और आगे, और पावर, मनीष भवन, और पावर चाहिए ताकि मैं, पावर का मतलब क्या है कि जैसे जैसे पावर बढ़ती है, मनी पावर बढ़ती है, तो व्यक्ति का भोग का साम्राज्य बढ़ता है, समझ रहे, भोग का साम्राज्य, क्योंकि जब तक जो चीज उसके अधीन नहीं है वो उसका भोग नहीं कर सकता। अगर किसी चीज का आपका भोग करना है तो आपके अधीन होनी चाहिए, उसके आप स्वामी होने चाहिए। आप कुछ खाना भी चाहते हो तो वो प्लेट आपकी अपनी होनी चाहिए, उस पर जो सामान है उसका पैसा दिया होना चाहिए आपको, तब खा सकते हो। आप किसी गाड़ी में बैठते हो तो दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठ सकते ये कह के कि मेरी जैसी थी, नहीं, उसका की आपके पास होना चाहिए, कागज आपके होने चाहिए। किसी प्रॉपर्टी पे अगर आप बैठे हो तो उस पर फोटो आपकी या आपके घर में किसी की होनी चाहिए, तब उस प्रॉपर्टी में जहां मर्जी उछल कूद कर सकते हो आप, है ना। तो जब मनी पावर बढ़ता है तो व्यक्ति के लिए उसकी जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं भोग की, वो उसको पूरा करना चाहता है, और उसको पूरा करने के लिए वो साधन जुटाता है, और उन साधनों से वो चाहता है कि धीरे धीरे मनी पावर बढ़ने से मैं अपने अधिकार को बढ़ाऊं। क्यों खरीदता व्यक्ति मकान, इधर भी चाहिए, उधर भी चाहिए, फिर उधर भी होना चाहिए, उधर भी होना, ताकि जब मैं कभी उधर जाऊं तो ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो मुझे ये बोले कि सॉरी सर, आप यहाँ नहीं रह सकते, आप हमारे घर पे क्यों आ गए, बाहर निकलिए, चलिए सर, आपका रूम रेंट पूरा हो गया, अभी फिर से रेंट दीजिए, सर आप 3 दिन के होटल में आए थे, अब प्लीज खाली करना पड़ेगा। नहीं सुनना चाहता, ईगो हर्ट होता है, इसलिए वो क्या चाहता है कि जब मैं कभी कहीं जाऊं बिना रोक टोक के, कोई मुझे रोके नहीं, जब मैं जब मर्जी जाऊं, ताला खोलूं, अंदर बैठूं, सोऊं, खाऊं, पीऊं, जो मर्जी करूं, तो भोग की जो ये वृत्ति है इसको सेटिस्फाई करने के लिए व्यक्ति धन की शक्ति को बढ़ाता है, और उस धन की शक्ति को बढ़ाकर वो अपने अनियंत्रित इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे नहीं मालूम होता ये पाप पूर्ण है या कैसे कर्म है, वो सारे कर्मों को करता है अनियंत्रित इच्छाओं को पूरा करने। यही इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश उस व्यक्ति ने पशु योनि में भी की थी, जहां मर्जी जाऊं, जो मर्जी करूं, जिस मर्जी के साथ भोग करूं, ये पशु जीवन में होता है सब। अब उसी मेंटेलिटी से वो मनुष्य बना है, और वही मेंटेलिटी अभी इन 2 पैर हाथ वाले शरीर के अंदर भी वही मेंटेलिटी है, इसलिए वही भोग करना चाहता है, हर जगह चाहता है मेरा अधिकार बने। पहले लोग एक देश से दूसरे देश के बीच में युद्ध हुआ करते थे ताकि वो देश को जय जीत कर हम लोग जब कभी वहां जाएं तो हर जगह लोग हमारे वो नतमस्तक हों, कोई रोके ना मुझे, इसलिए राज्य को जीता जाता था या अपने अधीन बनाया जाता था, उससे कर लिए जाते थे। धीरे धीरे राज्यों के बीच में संघर्ष होना शुरू हुआ, चाहे वो एक ही देश के क्यों ना हो, कहीं पानी के लिए झगड़ा है, कहीं बिजली के लिए झगड़ा है, कहीं सीट के लिए झगड़ा है, फिर उसी राज्य में उसी देश में धर्म के लिए, नहीं 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 हमारा धर्म, वो कहते जी नहीं हमारा धर्म। फिर इन्हीं धर्मों में बाद में इन्हीं जातियों में फिर छोटी छोटी जातियों के बीच में संघर्ष। अब देखिए पूरे विश्व भर में लोग अगर किसी, जब तक उनके दुश्मन कोई और हैं तब तक वो लड़ते हैं इकट्ठे होकर, जब वो दुश्मन नहीं रहता तो फिर वापस में लड़ते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, इतिहास गवाह है हमारा। तो क्योंकि कलह का युग है, कलेशों का युग है, इसलिए कलयुग इसका नाम है। तो कलह तो हरगा होगा होगा हर जगह, लेकिन इस कलह में, इस संघर्ष में जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहा है, जो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, जो आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन प्रमाणिक संप्रदाय के साधुओं से संग कर रहा है, तो वो लोग, ऐसे लोगों की कोई हम लोग कल्पना कर सकते कि ऐसे लोग कुछ प्रगति कर सकते हैं? सब लोग नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के मध्य में रहते हुए हम लोगों को इस अध्यात्म को अपनाना है, नहीं तो होगा क्या? वो जो देश की लड़ाई है, राज्यों की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, वो फिर घरों की लड़ाई, प्लॉट की लड़ाई, इन सब की लड़ाई में आ जाएगा। एक एक छत के नीचे भी दो लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मेरे भोग का एरिया अलग हो, तुम्हारे भोग का एरिया अलग हो। तो कहीं ना कहीं ये हिरण्यकश्यप वाली मेंटालिटी हर एक के अंदर है। इन हिरण्यकश्यप को मारने के लिए तो भगवान ने स्वयं अवतार लिया, हम जैसे छोटे हिरण्यकश्यप को तो बड़ा मुश्किल है, भगवान काल रूप में मार डालेंगे। समय ना तो ऐसी घनघोर तपस्या कर सकते हैं हम कि अंगूठे के बल पे खड़े होके पैर के कुछ सालों तक हम कुछ बोले और कुछ मिल जाए, नहीं। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति हिरण्यकश्यप से ये सीखे कि अगर व्यक्ति तपस्या कर रहा है और उस तपस्या का लक्ष्य केवल खुद है कि मैं, इस तपस्या को प्राप्त करने के बाद भी बता रहे हैं कि स्वर्णिम देह प्राप्त हो गया उसको और अपने भाई का वध का स्मरण करता रहा। देह क्या था कि जो मेरे भाई को जिसने मारा, हिरणाक्ष को, उस विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं, और जिसने, जिस विष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है उसकी भक्ति कर कर इन्होंने सारी चीजें प्राप्त की। लेकिन ईर्ष्या और द्वेष की पराकाष्ठा देखिए, वो नहीं मानता इस बात को, नहीं मुझे तो वध करना है उसका। किसका? उस विष्णु का जो हरे के हृदय में छुपा रहता है, सामने नहीं आता है। तो इस प्रकार हम इस अध्याय में देखते हैं, इस श्लोकों में, कि किस प्रकार सारे लोगों को जीत लिया। इस ब्रह्मांड में बहुत से लोग हैं, अनगिनत, और हर जगह जीवन है। जैसे प्रभुपाद जी चंद्रमा की भी बात कर रहे हैं कि लोग कहते हैं हम चंद्रमा पर हुआ है, लेकिन आज भी उसकी पिक्चर्स देखते हैं तो पता चलता है क्या है कि अभी उन्होंने शायद कुछ साल 50th एनिवर्सरी मनाई है या कुछ साल पूरे हुए हैं चांद पे गए हुए, तो उसमें भी वो यही बता रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं था हम गए हैं। अरे गए हो तो फक्र से बोलना चाहिए, है ना? नहीं कहते नहीं हम गए हैं, आप जो बोल रहे हो कि कुछ कमियां रह गई या फोटो ऐसी आई है उसमें ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, ये सब नहीं है, हम गए हैं, ये तो पिछले 50 साल से बोल रहे हो। लेकिन उन पिक्चर्स को आप देखो तो उन पिक्चर्स में साफ दिखाया गया है कि किस प्रकार जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, एस्ट्रोनॉट जो खड़ा है, उसने जो हेलमेट पहना है, वो हेलमेट के सामने जो पिक्चर दिख रही है, जिसने फोटो खींची है, वो कैमरा में फोटो खींचता दिखाई दे रहा है, और जो लाइट है तो वहां पर खड्डे, इक्विपमेंट्स या जो आदमी या कई और जो चीजें पड़ी हैं, उन सब लाइट्स के परछाई के, उसकी छाया जो शेडो है वो अलग अलग दिशा में जा रही है कि नहीं? और काफी चीजें ऐसी दिखाई गई, जो गाड़ी चलाई उन्होंने खूब मेहनत कर कर, वो गाड़ी के कई निशान दिख रहे हैं वहां पर, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ती है ना उसको लेवल करने में, जो उनसी जगह पे किया उन्होंने तो, और फिर एक जगह खड़ी कर दी तो गाड़ी के निशान दिख रहे हैं। और काफी इस तरह की चीजें दिखी पता चलती है, जिससे पता चलता है कि सभी मामला इस स्टूडियो में बढ़िया ढंग से सेट करके किया गया। और कई लोग ऐसे भी हैं, अच्छा कई लोग नहीं सॉरी, आपको पता है हम लोग, आपको मालूम है चंद्रमा पे गए हम, है ना, कितने लोगों लगता हम गए, ठीक है, जिनको लगता अच्छी बात है, तो उन लोगों के लिए हमने एक प्लॉट सिस्टम रखा है ऊपर। हम प्लॉट काट रहे हैं कुछ चंद्रमा पे, एक टेम्पल बना रहे हैं वहाँ पर, और उसके साथ वाले प्लॉट भी है हमारे पास, तो आप बुकिंग करा सकते हैं हमें कुछ पैसे देकर, और आप जब भी मतलब जाएगी पहली फ्लाइट ऊपर तो आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर लें तो हम आपको देंगे। 1 करोड़ रुपया है उसका 100 गज का, ठीक है, हंसी नहीं हम देंगे हम, ठीक है। अब जितने भी बोलते हैं ना हम विश्वास करते हो, कहेंगे नहीं करते विश्वास नहीं गए। तो कहने का क्या मतलब है कि इस प्रकार जो है लोग विश्वास कर लेते हैं कई चीज़ों पर, और हिरण्यकश्यप मेंटालिटी से हम बचना चाह रहे थे तो उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी प्रपट में इसलिए लिख रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं कलयुग में होंगी, बहुत सारी चीज़ें, वैज्ञानिकों के साथ आध्यात्मवादियों का हमेशा 36 का आंकड़े रहेगा, क्योंकि एक है असुर और एक है सुर, देवताओं और राक्षसों में हमेशा ही झगड़े हुआ करते थे, ठीक है ना। अब वो झगड़े दूसरे रूप के हो गए, ठीक है, पहले झगड़े होते थे और मंत्र और खतरनाक शस्त्रों से एक दूसरे का मारते थे और ये सब करते थे, अभी क्या है कि वही असुरों ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है ना, तो आप किस रूप में झगड़े होते हैं, अब वही, वो भी भगवान की भगवत्ता नहीं मानते थे डीमंस, यहाँ पर भी वो हैं, अब वो दूसरे रूप में लेबोरेटरीज में हैं अपने अपने, वो सब पक्षपात्र जो इस्तेमाल करते थे उन मंत्रों का जो उच्चारण कर कर वो सब कुछ करते थे, वही मंत्रों ने यहाँ पर C++ के नाम से या जो कंप्यूटर लैंग्वेज है हमारी उन मंत्रों के रूप में ले लिया, ठीक है ना। पहले मंत्र बोलते थे काम होता था, अभी मंत्र बोलते तो सैटेलाइट छोड़ते हैं, मतलब वो कंप्यूटर लैंग्वेज से, तो सारा कुछ जो है थोड़ा सा अब वो चीज़ हो चुकी है सारी चीज़, और यहाँ पर लोग उस रूप में इसको कर रहे हैं, चीज़ें वही हैं, तो ये लोग कभी नहीं मानेंगे, और हमको सिद्ध कर कर दिखाना है इनको किस प्रकार भगवान एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए भक्ति हर व्यक्ति के उसके भी नहीं है, क्योंकि भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञान मान माम पपत वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ बोला गया उस व्यक्ति को, और महात्मा कहा गया है, बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं ऐसे लोग जो ये जानते हैं कि हर चीज के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव सर्व कारण कारण, ऐसा फेथ करने वाला व्यक्ति, ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही भगवान कहते मेरी शरण में आता है। तो जिन लोगों के अंदर इस प्रकार का फेथ नहीं है तो उन्हें चाहिए कि अपना फेथ बढ़ाए, और फेथ बढ़ाने के लिए जिस प्रकार हम लोगों ने 25-50-75 साल इस भौतिक जगत में अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाए, इसके प्रति फेथ बढ़ाया, उसी प्रकार हमें यही समय भगवान को जानने के लिए और ग्रंथों को पढ़ने के लिए और भगवान के नामों को लेने के लिए लगाना पड़ेगा, तब ये फेथ डेवलप होगा और तब जाके हम लोग उस आध्यात्मिक जगत में एंटर कर सकेंगे। कितनी अजीब बात है ना, जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं या जो भक्ति में बड़े चढ़े हैं वो हमेशा उन लोगों को भागवतम में कई जगह से मूढ़ मूर्ख पता नहीं क्या क्या शब्द बोले गए ऐसे लोगों के लिए जो नहीं समझ पाते बातों भाई, जिसने रसगुल्ला खा लिया, बनाया मीठा डाला और खा लिया, और कुछ लोग बोल रहे हैं रसगुल्ले जैसे नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में रसगुल्ला डज नॉट एग्जिस्ट, कोई टेस्ट टूस नाम की कोई चीज नहीं है, और एक व्यक्ति रसगुल्ला खा चुका है, अब 36 का आंकड़ा तो रहेगा कि नहीं। एक मानता है भगवान है, रियलाइज किया, देख रहे, सेवा करके आनंद ले रहे, और एक व्यक्ति कह रहे नहीं है, तो हमेशा 36 का आंकड़ा रहेगा। लेकिन भक्त लोग उनसे ईर्ष्या नहीं करते, ये लोग ईर्ष्या करते हैं जिन्होंने रसगुल्ला खा लिया उनसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं खाया, जिन्होंने खा लिया है वो कहते नहीं, जिस दिन इसके मुंह पे लग गया ना एक दिन, उस दिन इसको मालूम पड़ेगा कि रसगुल्ला कितना मीठा होता है। इसलिए जिन्होंने रसगुल्ला खा लिया है वो लोग रसगुल्ले लेके बाहर निकलते हैं रेड लाइट्स पर, वो लोग है ना दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं, हरि नाम लेकर संकीर्तन करते हैं कि भैया देख रसगुल्ला कितना मीठा है, मैं तो आनंद कर रहा हूँ, खूब नाश्ता है, वो रसगुल्ला खाया मैंने, भक्ति करिए, कृष्ण प्रसाद खाया मैंने। और जो बेचारे शुष्क ज्ञानवादी हैं जो दार्शनिक हैं या जो ये सो कॉल्ड वैज्ञानिक हैं, ये अपने लेबोरेटरीज में केमिकल मिला मिला के रसगुल्ला ढूंढ रहे हैं, उसमें बड़ी बुरी हालत है लोगों की। तो इनको कैसे बताएं कि रसगुल्ला मीठा होता है? तो इनको तो जिसने खा लिया वो जंप लगाए, उछले, नाचे, कूदे, और वो कभी कहेगा, कभी आ जाएगा ना इस ग्रुप में जिसने रसगुल्ला खाया हुआ है, तो कहेगा सर थोड़ा सा टेस्ट करना, मैं भी चेक करता हूँ कैसा है। तो जिस दिन उसने खा लिया तो क्या करेगा वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो भी कहेगा बड़ा मीठा है था। कहता पागल है ये लोग जो बोल रहे रसगुल्ला डज नॉट एग्जिस्ट, इनको सेमिनार देना पड़ रहा है रसगुल्ला एग्जिस्ट, ये इकट्ठा करो, ये बनाओ, ऐसे बनाओ, पागल हो गए। कहते रसगुल्ला इतना मीठा होगा? तो ये युद्ध तो चलता रहेगा जिन्होंने खाया है उनके बीच में, किनके साथ, जिन्होंने नहीं खाया है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं खाया है उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा वातावरण नहीं मिला, उनको ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी, या ऐसा कोई व्यक्ति रसगुल्ला लेके नहीं पहुंचा उनके पास, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति है। तो क्या करना पड़ेगा, रसगुल्ले बना के लाने पड़ेंगे और उनको खिलाने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? तब जाके उनको लगेगा भैया सच में बड़ा मीठा है, तो कमाल ही हो गया, दूसरा कम मिलेगा प्रभु जी, है ना, तब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप सबको चाहिए आप खूब कृष्ण भक्ति के रसगुल्ले खाइए, हरि नाम के रसगुल्ले, मिठास में आनंद लीजिए, और उन लोगों को जो दूर से बोतल चाट रहे हैं, मतलब रसगुल्ले अंदर हैं और बोतल बाहर से चाट रहे हैं, जिनको लग रहा है नहीं बेकार है जी, हमने रसगुल्ला देखा है, खाया, टच किया, कुछ टेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को रसगुल्ले बाहर निकाल के खिलाने, ठीक है। कितने लोग करेंगे ऐसे, ठीक है। हरे कृष्ण, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर विमानंदे।